एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
ये जिंदगी वीरान है, यीशु नाम के जिंदगी
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष देवे जब आप उसके वचन को सुनते हैं और उसके राह में चलने का प्रयास करते हैं। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उसे प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हमारे मनों को हमारे हृदयों को खोल दे जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं। पिता, मैं मेरे श्रोताओं के लिए विशेषकर प्रार्थना करना चाहता हूँ, उनके संग हो, उन्हें तेरे वचनों को समझने के लिए मदद कर और उन्हें तेरे रास्ता में चलने के लिए मदद कर। हम सबों को तेरा पवित्र आत्मा से प्रेरित कर। मेरे संग हो पिता, मुझे तेरा वचन तेरे आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा बतलाने के लिए मदद कर। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण करें, आमीन। प्यारों, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है हथियार में साथी। यीशु की मृत्यु के पुनरुत्थान के बाद दो शिष्य एक दूसरे से बात कर रहे थे। यीशु इनसे मिला था किंतु वे अनजान थे। हम पढ़ते हैं लुका 24 का 32 में, और वे एक दूसरे से कहने लगे, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई। लुका 24 का 32। अपनी सेवकाई के आरंभिक दिनों से ही यीशु ने अकेले काम नहीं किया, उन्होंने प्रचार शिक्षा और सेवकाई में भाग लेने के लिए मनुष्यों को चुना। और यद्यपि चारों सुसमाचार मुख्य रूप से उनके जीवन मृत्यु और पुनरुत्थान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे अक्सर उनके शिष्यों जो उनके सबसे करीबी थे के संदर्भ में ऐसा करते हैं। इस प्रकार जब यीशु के इर्द गिर्द बहुत बड़ा विवाद छिड़ा तो हम देख सकते हैं कि यह शिष्यों के इर्द गिर्द भी भड़क उठा, जब तक कि अंत में यीशु ने चिल्लाकर कहा, यह पूरा हो गया, शैतान को यीशु को ठोकर मारकर गिराना असंभव नहीं लगा। हालांकि मसीह के अनुयायी बहुत आसान शिकार थे, उनके चरित्र दोषों ने उन्हें अपने अंदर समाहित कर लिया, जिसका दुश्मन ने आसानी से फायदा उठाया। घमंड, संदेह, हट, आत्ममहत्व, शुद्रता, चाहे जो भी खामियां हो, इनसे शैतान के लिए रास्ता खुल गया। उनकी आधी समस्या यह थी कि वे अपने विचार रखते थे कि क्या होगा और क्या होना चाहिए, लेकिन उन्होंने यीशु की कही बात नहीं सुनी। उन्हें बहुत सारे कठिन सबक सीखने पड़े और हमें भी सीखना है। जब कोई महान विवाद में दांव पर लगे अविश्वसनीय मुद्दे पर विचार करता है तो यह आश्चर्यजनक है कि यीशु ने अपनी सेवकाई में सहायता के लिए मनुष्यों का उपयोग किया, विशेष रूप से उन लोगों का जो उनके द्वारा चुने गए लोगों की तरह ही दोषपूर्ण थे। बेशक अगर हम पतित मानवता की स्थिति पर विचार करते हैं तो उनके द्वारा चुने गए किसी भी व्यक्ति में नैतिक दोष नहीं होंगे। गलील की झील के उत्तरी किनारे पर चलते हुए लोगों की भीड़ के साथ यीशु ने दो मछली पकड़ने वाली नावों को देखा, जिनके मालिक एक अनुत्पादक रात के बाद सफाई कर रहे थे। ये मछुआरे पहले से ही यीशु के बारे में जानते थे, उसने उनके आराधनालय में शिक्षा दी थी जहां उसने अपने शब्दों से सभी को चकित कर दिया था। हम पढ़ते हैं लुका 4 का 31 से 32 में, यीशु ने उनके आराधनालय में एक आदमी से एक दुष्ट आत्मा को भी निकाला था और हर कोई आश्चर्यचकित था। लुका 4 का 33 से 36। उन्होंने यीशु को पतरस के घर में पतरस की सास को ठीक करते हुए देखा था। लुका 4 का 38 और 39। और बाद में वो शाम कई अन्य लोगों को ठीक करते हुए। लुका 4 का 40 से 41। प्यारो, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि समुद्र तट पर एक भीड़ यीशु का अनुसरण कर रही थी। यीशु पतरस की नाव में चढ़े। पतरस से नाव को किनारे से थोड़ा दूर ढकलने के लिए कहा ताकि सभी लोग उन्हें देख सके, और फिर लोगों से बात की। लूका 5:3 हम पढ़ते हैं इसमें। जब उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया तो उन्होंने पतरस से कहा कि वह अपने ताजे साफ किए गए जाल को गहरे पानी में फेंक दे। पतरस ने सोचा होगा कि इससे कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन यीशु के प्रति सम्मान के कारण उसने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। लूका 5:6-8 में हम पतरस की प्रतिक्रिया पाते हैं। उसके प्रतिक्रिया यह समझाने में हमारी मदद करती है कि पतरस के स्पष्ट दोषों के बावजूद यीशु ने उसे चुना। पतरस की प्रतिक्रिया उल्लेखनीय है। शायद यह याकूब के स्वर्गदूत के साथ कुश्ती लड़ने के समान है। दिव्य उपस्थिति का वही एहसास और अयोग्यता का जबरदस्त एहसास। उत्पत्ति 32:24-30। एक बात स्पष्ट है, पतरस को अपने पाप का एहसास हुआ क्योंकि वह जानता था कि प्रभु वहां थे। अपने पाप के बारे में उसका खुला कबूलनामा उदाहरण के लिए कुछ धार्मिक नेताओं की प्रतिक्रिया के बिल्कुल विपरीत है, जिन्होंने यीशु को खुद एक पापी के रूप में संदर्भित किया बजाय इसके कि वे उनकी उपस्थिति में भी अपने पाप को स्वीकार करें। लूका 5:11 कहता है कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और यीशु के पीछे चले गए, जिसका मतलब है कि जब उनके जाल इतने भर गए कि वे टूटने ही वाले थे तो वे सब को छोड़कर यीशु के पीछे चले गए और वे लोग यीशु के साथ रहते हैं। जब यीशु ने गलील के तट पर पहले शिष्यों को बुलाया तो उन्होंने पहले ही बुराई पर उसकी शक्ति को देखा था। उन्होंने उसे दुष्ट आत्मा को चुनौती देते लूका 4:34-36 बीमारों को चंगा करते, प्रकृति पर शासन करते लूका 5:4-6 पाप को उजागर करते, और फिर पतरस को आश्वस्त करते देखा था कि डरने की कोई जरूरत नहीं है लूका 5:10। कुछ समय बाद पूरी रात प्रार्थना करने के बाद लूका 6:12 में हम पढ़ते हैं इसे, यीशु ने अपने अनुयायियों या शिष्यों को इकट्ठा किया और उस बड़े समूह में से 12 को चुना। उन्हें प्रेरित कहा। उन्हें भेजने से पहले यीशु ने उनके साथ कुछ समय बिताया और उन्हें निर्देश दिए। हम इसे पढ़ते हैं लूका 9:1-5 में, जो कुछ समय बाद 70 के एक बड़े समूह को दिए गए विवरण के समान थे, जो हम पाते हैं लूका 10:1-16 में। महान विवाद में शैतान की सबसे बड़ी चालों में से एक यह है कि वह मसीह के नाम का दावा करने वालों को अपने साथ मिला लेता है और उनका इस्तेमाल उस नाम को अपवित्र करने के लिए करता है। इसलिए उन्हें भेजने से पहले यीशु चाहता था कि ये लोग उसके साथ रहें ताकि निसंदेह वे उसे सीख सके। हम पाते हैं मरकुस 3:14 में, और आगे हम देखते हैं प्रकृति पर यीशु का प्रभुत्व। मत्ती 8:23-27, मरकुस 4:35-41 और लूका 8:22-25 में हम यीशु का प्रकृति पर प्रभुत्व को पढ़ते हैं। यहाँ हम महान विवाद की वास्तविकता को देखते हैं। इस विशेष कहानी में शिक्षण के एक लंबे दिन के बाद जब शाम होने लगी तो यीशु ने सुझाव दिया कि वह और प्रेरित कम आबादी वाले विपरीत तट पर जाएं। अपनी यात्रा के दौरान अचानक एक भयंकर तूफान ने उन्हें मारा और लहरें नाव से टकराने लगी। मरकुस 4:37। यीशु इतना थक गया था कि वह नाव के पिछले हिस्से में सो गया। ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ भी पता नहीं था। तूफान से जूझने में शिष्यों के इतने व्यस्त होने के कारण शायद उन्हें यह एहसास होने में कुछ समय लगा होगा कि यीशु सो रहे हैं। जब वे पहली बार यीशु को पुकारते हैं तो वे कुछ नहीं कहते। वे अपनी मुश्किलों को समझाने के लिए कोई उपदेश नहीं देते या नहीं बताते कि शिष्य स्थिति में विजयी होने के लिए क्या कर सकते थे। वे बस खड़े होते हैं, अपना हाथ उठाते हैं और हवा और लहरों से शांत होने के लिए कहते हैं, मानो वे केवल उपद्रवी बच्चे हों। इस पर शिष्यों का दिल दहल गया। वे बहुत डर गए और एक दूसरे से कहने लगे, यह कौन है कि हवा और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। मरकुस 4:41 में यह रिकॉर्ड है। यद्यपि इसमें बहुत सी शिक्षाएं हैं, परंतु इस कहानी से हम यीशु की शक्ति की सीमा को देख सकते हैं कि वह बहुत ही ज्यादा है, असीमित है, और इसलिए हमें उस पर भरोसा करने की आवश्यकता है, चाहे कुछ भी हो। हालांकि हम प्रकृति पर यीशु की शक्ति की वास्तविकता को देख सकते हैं, लेकिन एक जगह जहां वह उस शक्ति को लागू नहीं करेगा वह है हमारी अपनी इच्छा। इसलिए हमें स्वतंत्र चुनाव के पवित्र उपहार के साथ जो उसने हमें दिया है बहुत ही सावधानी बरतना चाहिए, और महान विवाद की वास्तविकता हमें उस उपहार का उपयोग करने के तरीके में और भी अधिक सावधान बनाती है। आगे हम पढ़ते हैं, शिष्यों में सबसे महान कौन बनेगा, इसका वे लोग बहस करते हैं। मरकुस 9:33-37 में यीशु ने अपने शिष्यों को महान होने के लिए अपने आप को नम्र करने और दूसरों की सेवा करने की शिक्षा दी, और बच्चों की तरह स्वर्ग के राज को ग्रहण करने सिखाया। मत्ती 18:3-5 में भी हम पाते हैं। शिष्यों के बीच यह बहस निस्संदेह भविष्य के बारे में उनके विचारों से संबंधित थी। उन्होंने सोचा कि यीशु रोमियो से इज़राइल को छुड़ाने जा रहा है, दाऊद के राज्य को बहाल करेगा, और राजा सुलेमान के अधीन राष्ट्र द्वारा अनुभव की गई सारी महिमा में इसके नए राजा के रूप में शासन करेगा। जब ऐसा होगा तो उन्होंने निस्संदेह मान लिया कि मसीह के आंतरिक घेरे के हिस्से के रूप में उनके पास नए बहाल राज्य में प्रमुख और महत्वपूर्ण भूमिकाएं होंगी। लेकिन यह भी पर्याप्त नहीं था, वे जानना चाहते थे कि उनमें से कौन राज्य में सबसे महान होगा। मत्ती 20:20-28 में हम यीशु के उत्तर पाते हैं। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा ना होगा, परंतु जो कोई तुम्हें बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम्हें प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल करी जाए, परंतु इसलिए आया कि वह आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे दे। हम वचन के साथ दिव्य मुलाकात के बारे में आगे पढ़ते हैं। यीशु की मृत्यु के बाद यह तीसरा दिन था। उनके अनुयायी अभी भी सदमे में सुनते, उन्हें लगा कि वह रोमियो को कुचल देगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि रोमियो ने उसे कुचल दिया है, क्योंकि रोमियो ने यीशु को पकड़कर उसे क्रूस पर लटका दिया था। क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद कई शिष्य प्रेरितों के साथ मिले। रविवार की सुबह सुबह उनके बीच से महिलाओं का एक समूह कब्र पर गया। लुका ने उनमें से 3 का नाम लिया है, लेकिन कुछ और भी थे जो गलील से यीशु के साथ आए थे। हम इसे पढ़ते हैं लुका 23:55-24:1-10 पद में। वे खाली कब्र से लौटकर 11 और बाकी सभी को चमकते हुए कपड़े पहने 2 पुरुषों के बारे में बताने के लिए लौटे थे। लुका 24:9। लुका ने लिखा है कि उस रविवार की दोपहर को यीशु के 2 अनुयायी यरूशलेम से 2-3 घंटे की यात्रा करके इमाउस में अपने घर वापस आए। लुका 24:13। यह संभव है कि वे सप्ताहांत में हुई घटनाओं की चर्चा में इतने मगन थे कि उन्होंने पास में चल रहे एक अजनबी को नहीं देखा। शायद वे कभी भी यीशु पर ध्यान नहीं देते अगर यीशु ने उनकी बातचीत में यह ना पूछा होता कि वे इतने दुखी क्यों हैं। लुका 24:17। इस सवाल ने किलियोपास नामक व्यक्ति को वास्तव में उत्तेजित कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि अजनबी उन सभी बातों से कैसे अनभिज्ञ हो सकता है जो घटित हुई थी। कौन सी बातें, अजनबी ने पूछा। लुका 24:19 पद में, लुका 24:19-35 में हमें इन लोगों की समझ की कमी का पता चलता है और यीशु ने उन्हें परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से सच्चाई समझाई। ध्यान दे कि यीशु का पूरा जोर पवित्र शास्त्र पर था, जिस तरह उसने जंगल में शैतान के साथ अपनी लड़ाई में पवित्र शास्त्र का सहारा लिया था, उसी तरह वह इन दोनों को उस अंधकार से बाहर निकालने के लिए यहाँ भी पवित्र शास्त्र का सहारा लेता है जिसमें वे थे। अपने और अपने मिशन के बारे में बाइबल की शिक्षाओं में उन्हें स्थापित करने के बाद ही यीशु ने उन्हें बाइबल की शिक्षाओं को पुष्ट करने में मदद करने के लिए कुछ शक्तिशाली अनुभव दिए। सबसे पहले उसने खुद को उनके सामने प्रकट किया, यह दिखाते हुए कि वह वास्तव में मृतकों में से जी उठा था। दूसरा, वह उनकी दृष्टि से ओझल हो गया, लूका 24 का 31। यहाँ भी जैसा कि पूरे सुसमाचार में है, हम देखते हैं कि यीशु ने बाइबल को सबसे आगे और केंद्र में रखा है। प्यारो, हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के अधिकार पर भरोसा कर सकते हैं। यीशु जब यहाँ शरीर में थे तब उन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाला, निराश लोगों को आशा दी, लोगों को दिखाया कि परमेश्वर के अगापे प्रेम को कैसे जीना है, सूबेदार के सेवक को चंगा किया, एक विधवा के मृत बेटे को जीवित किया, लूका 7 का 12 से 16 में हम पाते हैं, एक तूफान को शांत किया, लूका 8 का 22 से 25, गदारा में दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति को उसकी दुष्ट आत्माओं से मुक्त किया, लूका 8 का 26 से 39, एक महिला को चंगा किया जिसे 12 साल से रक्त स्राव हो रहा था, आयर की मृत बेटी को जीवित किया और यहाँ तक कि लाजर को भी मृतकों में से जीवित किया जब वह 4 दिनों से मृत था। उसने जो कुछ किया और उससे भी अधिक, फिर भी लोगों को उस पर विश्वास करने में संघर्ष करना पड़ा। जायर की बेटी को उसने जीवित किया, इसे हम पाते हैं लूका 8 का 41 से 42 और 49 से 56 में, और लाजर को उन्होंने मृत से जीवित किया, इसे हम यूहन्ना 11 अध्याय में पढ़ते हैं। यहाँ तक कि मसीह के अपने शिष्य भी सीखने और समझने में धीमे थे। विश्वास ईश्वर की ओर से एक उपहार है। मसीह ने हमारे लिए जो कुछ किया है उस पर विश्वास के माध्यम से उधार पाया जाता है। शैतान यह जानता है और इसलिए वह हमें उस विश्वास से दूर करने के लिए वह सब कुछ करेगा जो वह कर सकता है। सौभाग्य से, और हमें यह सदैव याद रखना चाहिए, यीशु शैतान से कहीं अधिक शक्तिशाली है, और यदि हम यीशु से लिपटे रहते हैं तो शैतान हमें पराजित नहीं कर सकता है। यह खुशखबरी है। प्यारो, आइए हम यीशु के पास आए, उससे लिपटे रहें, उस पर विश्वास करें, उस पर भरोसा करें, हम शैतान पर विजय प्राप्त करेंगे यीशु मसीह के शक्ति से, क्योंकि यीशु महान है, वह हमें विजय दिलाएगा। आइए हम उस पर विश्वास करें। परमेश्वर आपको और हम सबों को बहुतायत से आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना करें। ये हमारे महान परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के पास आते हैं इस वचन के लिए, इस सामर्थ्य वचन के लिए हम तुझे बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य उद्धार करता है, उसमें हम विश्वास करके पाप पर विजय हो सकते हैं, शैतान पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के शक्ति से ही। पिता परमेश्वर, मेरे श्रोताओं के संग हो कि वे इसे विश्वास कर सके। मेरे संग हो पिता कि हम सब इस विश्वास में बढ़े और तेरे राह में चले। हम सबों को तेरे राज के लिए तैयार कर पिता, हम सबों को तेरे राज में पहुंचा दे, क्योंकि इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन।
ये जिंदगी वीरान है यीशु नाम के बगैर।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833221 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।